आरव को आयु के साथ लंदन आए हुए पूरा एक महीना बीत चुका था। लक्षित ने उसका रेजिग्नेशन अप्लाई किया था, जिसके बाद उसे एक महीने तक हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देनी थी। तब तक आरिशा के सेमेस्टर भी कंप्लीट हो चुके थे। आयु हॉस्पिटल गई हुई थी। वहां से रिजाइन करने के बाद उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी, जिसमें सारा स्टाफ कलेक्ट था। आरव बच्चों के साथ घर पर था। पार्टी के बाद जब आयु वहां से जाने लगी, तब सनम उसके पास आई और उसे हग करते हुए बोली, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तुम्हें डॉक्टर लक्षित के सामने मेरा फेवर किया, उस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से ही हम दोनों साथ हैं। आयु मुस्कुराते हुए उसको सहलाकर बोली, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, और मैंने तुम पर कोई फेवर नहीं किया है। इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, जो हॉस्पिटल के पहले दिन से ही तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया। मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ तुम्हारे रहते हुए, और यू नो व्हाट, तुम मेरी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड हो। सनम आयु से अलग हुई और नम आंखों से बोली, फिर तो मैं सच में लकी हूँ, तुमसे मिलने वेकेशन पर मुंबई जरूर आऊंगी। ये हुई ना बात, और डोंट वरी, हम कॉल्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, आयु ने जवाब दिया। आयु के उस दिन डॉक्टर लक्षित के सामने सनम की दिल की बात बताने के बाद उसके कहने पर लक्षित ने सनम को एक चांस दिया था, और आज वो दोनों रिलेशनशिप में थे। पार्टी ओवर हो चुकी थी तब लक्षित आयु और सनम के पास आया। लक्षित आयु से बोला, चलो एक आखिरी बार और तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, इसी बहाने तुम्हारे एनवायरमेंट की कुछ हेल्प हो जाएगी, आयु ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। सनम को बाय बोलने के बाद आयु लक्षित के साथ गाड़ी में थी और वो दोनों घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। लक्षित बोला, सनम की तरह मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। एक्चुअली जब तुम 1 वीक के लिए गई थी तब भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और रोज आकर देखता था कि तुम वापस आ गई हो या नहीं। जब हम शादी करेंगे तो तुम प्लीज बच्चों और आरव के साथ लंदन जरूर आना। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो जवाब में बोली, यहाँ रहते हुए लगभग 4 साल हो जाएंगे, और आई नेवर थिंक कि मुझे भी यहाँ से जाने में तकलीफ होगी। मैंने तो हमेशा यहीं पर रहने का सोचा था, पर हु नोज डेस्टिनी में क्या लिखा होता है। फिर से सब ठीक हो गया और मैं आरव के पास जा रही हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों घर पर पहुंच चुके थे। लक्षित को बाय बोलकर आयु अंदर गई तो आरव उसका वेट कर रहा था। उसे देर हो जाने की वजह से आर्या और आरिशा सो चुके थे। आयु के दरवाजा बंद करते ही आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर आयु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, और वो उसी अंदाज में बोली, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा आजकल तुम्हें मुझ पर? वैसे घर पर अकेले होने का अच्छा फायदा उठाया है, दोनों बच्चों को टाइम से ही सुला दिया। आरव ने जवाब में कहा, वैसे मैंने अकेले होने पर और भी कुछ किया है जिसकी तुमने आज तक तारीफ नहीं की। सुबह हमारी फ्लाइट है और परसों पार्टी। देखा, यहाँ पर रहते हुए भी मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया है। एक्सक्यूज मी, तुमने सब कुछ अकेले नहीं किया, अयान और कबीर ने तुम्हारी पूरी हेल्प की है, तो सारा क्रेडिट अकेले लेने की जरूरत नहीं है, आयु ने आइज रोल करके कहा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसे बेडरूम में लेकर जा रहा था, और उसके इरादे क्या थे ये आयु को अच्छे से समझ आ रहा था। रूम में आते ही आरव ने उसे नीचे उतार दिया। आयु ने जल्दी से उसे बेड पर धकेला और दौड़कर बाथरूम में चली गई। वो अंदर जाकर तेज आवाज में बोली, मैं खुद से चेंज कर सकती हूँ मिस्टर खुराना, तो रोज रोज मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें घर आने के बाद ड्रेस तक खुद से चेंज नहीं करनी पड़ती, आरव ने सिर हिलाकर कहा, और वो बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। आयु बाथरूम में आ तो गई थी, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं थे। काफी देर तक आयु ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। वो तेज आवाज में बोला, मेरी हेल्प तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, सीधे भाग कर जाने से कुछ नहीं होता, कपड़े भी साथ में होने चाहिए। अब क्या हमेशा की तरह बाथरूम पहनकर बाहर आओगी? आयु ने झटके से दरवाजा खोला। उसने अभी तक वही ड्रेस पहन रखी थी। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, हाँ तो ठीक है, अब ले लूंगी, मैं काफी थकी हुई हूँ आरव, और सुबह हमें जल्दी भी उठना है, तो आज रात तुम कुछ नहीं करोगे। पिछले 3-4 दिनों से तुम्हारा यही बहाना सुन रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? I mean, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, आरव ने कैरिंग वे में पूछा, तो आयु उसके गले लग गई। आयु ने गहरी सांस भरते हुए कहा, एक्चुअली मैं लंदन को मिस करूंगी, बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, पर जाना जरूरी भी है, हम इस तरह अपनी फैमिली को वहाँ नहीं छोड़ सकते। तुम्हें ये जगह इतनी ही पसंद है तो हम वेकेशन के लिए यहाँ पर आते रहेंगे, आरव ने आयु को सहलाकर कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और आयु से अलग हुआ। फिर आरव ने उसके लिए नाइट ड्रेस निकाली। उसने आयु के हाथ में ड्रेस थमाकर कहा, ये लो जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रिफ्रेशिंग लेकर आता हूँ, कहकर आरव ने आयु के फोरहेड पर किस किया और फिर बाहर चला गया। पागल कहीं का, आयु ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, और फिर ड्रेस लेकर चेंज करने चली गई। वो वापस आई तब तक आरव उसके लिए स्नैक्स के साथ कॉफी लेकर आया था। उसे देखकर आयु ने कहा, मेरा पूरी रात जागने का प्लान नहीं है मिस्टर खुराना, जो तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लेटते ही नींद आ जाएगी, अगर नहीं भी आएगी तो तुम हो ना मुझे सुलाने के लिए। अपनी बात कहकर आयु ने आरव की गोद में सिर रख लिया और वो धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। अचानक आयु ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखकर कहा, पता है कभी कभी मुझे आरिशा से बहुत जलन होती है कि उसके पास एक अच्छे डैड है और मेरे पास नहीं थे। तुम जिस हिसाब से उसे पैम्पर करते हो, उसके बाल बनाते हो, उसे स्कूल के लिए रेडी करते हो, इवन रात को जब तक उसे नींद नहीं आ जाती उसके बालों को सहलाते रहते हो, आई रियली मिस माई डैड। बेस्ट डैड ना सही, लेकिन तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है, तो इन सब कामों के लिए तुम कभी भी मुझे बोल सकती हो। कभी आरिशा ने तो आकर नहीं कहा कि मुझे मॉम से जलन होती है जब डैड हर बार अपने हाथों से उन्हें ड्रेसअप करते हैं, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। उसके ऐसा कहने पर आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। आयु ने आरव को गुड नाइट विश किया और सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह आयु आरव से पहले उठ गई थी। उसने उठते ही आरव के फोरहेड पर किस किया और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद उसने आरव को भी उठा दिया था। तैयार होने के बाद उन्होंने मुंबई के लिए उड़ान भरी। वहीं मुंबई पहुंचते ही आयु और आरव घर पहुंचे तो वहां पर पार्टी की ही तैयारी चल रही थी। हर कोई उसी में लगा हुआ था। आरव आते ही उनके साथ बिजी हो गया था, जबकि आयु अपने रूम में आराम कर रही थी। ये इंसान बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। खुद को पार्टी करनी थी तो यहाँ सबको काम पर लगा दिया। जो भी हो, इस पार्टी का सिर्फ एक ही फायदा है कि माहिरा और आरव का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसके लिए मैं एक तो क्या 10 पार्टीज के लिए भी हाँ कर सकती हूँ, आयु ने सिर हिलाकर कहा। वो रूम से बाहर जा रही थी ताकि आरव और बाकी फैमिली की मदद कर सके। तभी आयु को चक्कर आया तो उसने दरवाजा पकड़ लिया। उसने सिर पकड़ कर कहा, लगता है फिर से बीपी लो हो रहा है, पर मैंने तो ठीक से खाना खाया था, जरूर जेट लैग हो रहा होगा।
आयु को लगा कि उसे काम की वजह से ही थकान हो रही थी। काम करते हुए उसे बीच बीच में चक्कर आ रहे थे। आयु ने इसे काफी देर तक इग्नोर किया, लेकिन अचानक काम करते हुए वो बेहोश हो गई थी।